मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 8 जून 2015 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का अमेरिका के स्टेट फ्लोरिडा से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने 11 उन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 25 अक्टूबर से होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं शैलेंद्र प्रताप सिंह, आप फजलपुर से हैं बुलंदशहर जिले उत्तर प्रदेश से, गोविंद चंद्राकर महासमुंद छत्तीसगढ़ से हैं, आनंद कुमार सेठ वाराणसी से, आकांक्षा जोशी हल्द्वानी उत्तराखंड से, सुमित कुमार कुशवाहा उरई जिला जालौन उत्तर प्रदेश से, बागेश्वर कुमार दिल्ली से, सुरजीत सिंह महंत्री उत्तर प्रदेश से, माधवादित्य सिंह बक्सर बिहार से, मनीष बंसल नई दिल्ली से, राहुल कुमार सिंह भोपाल से और भावना पांडे मऊ उत्तर प्रदेश से। तो शैलेंद्र, गोविंद, आनंद, आकांक्षा, सुमित, बागेश्वर, सुरजीत, माधवादित्य, मनीष, राहुल और भावना, मैं आप सभी साथियों का एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, 2 दिन के बाद हम फिर से आमने सामने आज बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बीच के 2 दिन आपके खाली नहीं गए होंगे। सैटरडे को आपको अखबारों की क्लिपिंग्स पढ़ने को एज इट इज मिली होंगी और साथ ही इतवार को कुरुक्षेत्र और योजना पत्रिका के लेख भी आपको पढ़ने को मिले होंगे। साथ ही जो स्टूडेंट्स फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के हैं उन्हें एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भी उनके मेल पर भेजा गया है। मुझे विश्वास है कि उन्होंने वो मेल जरूर सुना होगा, केवल सुना ही नहीं होगा बल्कि बहुत ध्यान से सुना होगा और सच तो यह है कि पढ़ने के स्टाइल में सुना होगा। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है ये पूरी तरह से सिविल सर्विस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं। न केवल टॉपिक ही सिविल सर्विस परीक्षा से रिलेटेड होते हैं बल्कि उनमें जो विश्लेषण की जो तकनीकी होती है और जो मटेरियल भी दिया जाता है वो उसी तरह का होता है जो सिविल सर्विस में आपके सीधे सीधे काम आ सके। तो मित्रों, 2 दिन के बाद हमारी आज फिर से मुलाकात हो रही है। एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आप जानते हैं कि अभी मैं यूएस में हूं और यहाँ की बहुत सी चीज़ों को जानने समझने और देखने का मौका मिला है। हालांकि यह अमेरिका की मेरी पहली यात्रा नहीं है, हम लोग इससे पहले भी अमेरिका आए थे। अमेरिका और कनाडा में लगभग 3 महीने हम लोग रहे थे और पूरा अमेरिका और कनाडा हम लोगों ने घूमा था क्योंकि उस समय जगह जगह पर मेरे लेक्चर ऑर्गेनाइज किए गए थे। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं कि उस समय शायद मैंने अमेरिका को उतना नहीं समझा था जितना मैं इस बार समझ पाया हूं। और मित्रों, इसके जरिए मैं कहना आपसे ये चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम पहली बार चाहे किसी किताब को पढ़ें, चाहे किसी व्यक्ति से मिलें, चाहे किसी शहर में जाएं, चाहे कोई फिल्म देखें या किसी दूसरे देश में जाएं, पहली बार हम उसे कभी भी पूरी तरह समझ नहीं सकते। पूरी तरह क्या, मुझे तो लगता है कि शायद हम सही सही अगर समझने की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। जब हम दूसरी बार पढ़ते हैं तब कहीं सही मायने में हमारा और उसका तालमेल एक सही वेवलेंथ के स्तर पर बैठ पाता है। आप कोई किताब उठा करके देख लीजिए, एक बार आप पढ़ जाइए, आपको ठीक है क्या लिखा है, क्या बातें हैं, थोड़ी बहुत आपकी समझ में आ गई, लेकिन जो गहराई में जाने की बात होती है वो तभी हो पाती जब सेकेंड टाइम आप उसे खोलें। आप कोई भी एक फिल्म देख लीजिए, अब मैं चाहूंगा कि इसे आप प्रैक्टिकल करके एक बार देखें कि जब आप पहली बार किसी फिल्म को देखेंगे तो ठीक है आप उसका मूल्यांकन करते हैं कि अच्छी लगी या ठीक थी या बेहतर थी या बेकार थी, जो भी है आप एक भावना बना लेते हैं। लेकिन जब उसी फिल्म को आप दूसरी बार देखेंगे तब देखेंगे कि पाएंगे कि आपकी अप्रोच उसके प्रति बिल्कुल ही बदल गई है। दोस्तों लगभग लगभग यही अमेरिका में मैं जब दूसरी बार आया हूं तो मेरे साथ हो रहा है। अब मैं अमेरिका को बड़े दूसरे तरीके से समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं और उन्हीं की कुछ बातों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और उसका पर्पस यही है कि मोटिवेशन का सेक्शन भी उसमें कवर हो रहा है और साथ ही साथ आप इस देश के बारे में भी जान सकेंगे, खासकर उस देश के बारे में जो अभी एक तरह से पूरी दुनिया जिसकी तरफ देख रही है और आप कह लीजिए कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में जो सर्वोपरि है, चाहे वो आर्थिक विकास का मामला हो, चाहे वो इनोवेशन का मामला हो, नॉलेज आप कह सकते हैं उसका मामला हो, चाहे वो डिफेंस का मामला हो, हर दृष्टि से आज अमेरिका पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। और सच पूछिए तो जिस हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं उस ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही कहीं ना कहीं अमेरिकीकरण हो जाता है, विशेषकर संस्कृति के क्षेत्र में तो ये बात ज्यादातर कही जा सकती है। जिसे हम कहते हैं विश्व संस्कृति, तो कुछ लोगों का यही मानना है कि ये विश्व संस्कृति कुछ नहीं है, ये बेसिकली अमेरिकी संस्कृति है। तो इसलिए दोस्तों जानबूझकर मैं यहां की बातों को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं ताकि अमेरिका के बारे में आपका जो विजन है वो फैल सके, सही विजन आप में शामिल हो सके, ताकि आप सिविल सर्विस परीक्षा में जब कोई भी प्रश्न का उत्तर दें, अगर आपको जरूरत महसूस होती है उसमें कोई अपने मौलिक विचार रखने की, कंपेयर करने की, उदाहरण देने की, तो यदि विषय से तालमेल बैठता है तो आप अमेरिका का उदाहरण वहां दे सकते हैं। मित्रों मैं इस बीच के दो तीन घटनाओं की छोटी छोटी चर्चा करना चाहूंगा जो अभी मेरे दिमाग में दर्ज हैं और मैं इन्हें थोड़ी सी महत्वपूर्ण भी मानता हूं। यहां कुछ बहुत ही अच्छे मैनर्स हैं, मैं मैनर्स ही कहूंगा, इतने अच्छे मैनर्स हैं कि देखकर दंग हो जाना पड़ता है। मित्रों देखिए अमेरिका एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, पूरी तरह से औद्योगिकृत राष्ट्र है, लोग व्यस्त भी हैं, लोग पैसे वाले भी हैं, लोग भौतिकवादी में जीते भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ये सारी चीजें यहां के लोगों के साथ हैं। इसके बावजूद उनमें कभी कभी मुझे इतनी जबरदस्त धैर्य दिखाई देता है, इतना जबरदस्त धैर्य है, इतना जबरदस्त उनका इनर बैलेंस दिखाई देता है कि यकीन नहीं होता कि ये कैसे संभव है। हालांकि ये बात अलग है कि यहां से भी अधिक ये बातें आपको यूरोप में देखने को मिलेंगी। जैसे मैं दो तीन आपको छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए कि आप किसी स्टोर रूम में जाइए, स्टोर का मतलब है एक सुपरमार्केट, जो बड़े बड़े बाजार होते हैं, वो आप एक बड़ा सा हॉल है जिसमें आप सामान खरीद रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें आप जाइए। इसके बाद जब मान लीजिए कि कोई अमरीकी निकलेगा तो वो गेट खोलेगा, है ना, होता है ना कि आप धकेलिए तो उसको ग्लास का गेट होगा, उसको धकेल करके या स्टील का ही होगा या एल्यूमिनियम का होगा, उसको खोल करके वो बाहर निकलेगा। लेकिन यदि उसने देख लिया कि उस और भी कुछ लोग निकलने वाले हैं तो वो बकायदे उसकी हैंडल को पकड़ करके दरवाजे को इस तरह से खुला रखेगा जिस तरह से कि कोई दरबान दरवाजे को खुला रखता है, और तब तक खुला रखेगा जब तक कि सारे के सारे निकलने वाले लोग पूरी तरह से निकल नहीं जाते, और इसके बाद वो धीरे से दरवाजा छोड़ेगा और बड़े इत्मीनान से फिर अपने रास्ते चला जाएगा। हो सकता है कि उसको कोई बहुत जल्दी में कोई काम हो और हड़बड़ी में जाना हो, लेकिन वो अपने इस मैनर को नहीं छोड़ता। मित्रों ये एक बार नहीं, कई बार मेरा इस तरह के उदाहरणों से पाला पड़ा है और मुझे खुशी है कि कम से कम ये भी एक अच्छी सी आदत मेरी पड़ गई है। हालांकि पहले भी आदत थी लेकिन उतनी शायद पक्की नहीं थी जितनी अब ये आदत पक्की हो गई है। यह दूसरों को रेस्पेक्ट देने की बात होती है मित्र, जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। एक बार मैं एक दो यहां जो हमारे परिचित हैं उनके साथ सुपरमार्केट ऐसे ही कुछ किराना सामान, घर घरेलू का सामान लेने गए हम लोग। तो जैसे कि हम लोगों की जनरली भारतीयों की आदत रहती है, जैसे होता है ना जब आप सुपरमार्केट में जाइए तो दोनों तरफ तो सामान की अलमारियां लगी हुई हैं, बीच में एक गैलरी जैसा थोड़ी सी जगह है, तो मैं गैलरी के बीचों बीच खड़ा होकर के सामान जो लगे हुए थे अपनी गर्दन ऊपर उठा करके पढ़ने लगा। अब रास्ता लगभग लगभग बंद सा हो गया था, थोड़े से रास्ते जरूर दोनों साइड में मेरे दाएं और बाएं और थोड़ा सा स्पेस इतना जरूर था कि अगर वो कोई चाहता तिरछा होकर के निकलना तो वो निकल सकता था, और हो सकता है कि उसके तिरछे निकलने पर मुझे थोड़ा सा धक्का भी लगता। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने ऊपर से देखने के बाद अपनी गर्दन थोड़ी सी पीछे घुमाई तो मैंने देखा कि 3-4 लोग लाइन में खड़े हैं। और आप ताज्जुब करेंगे, वे केवल इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मेरा देखना खत्म हो, मैं जो कुछ भी लेना चाह रहा हूं या यहां देख रहा हूं या पढ़ रहा हूं वो खत्म हो तो मैं आगे बढ़ूं, तो फिर वो आगे बढ़े। मतलब बेवजह उन्होंने मेरे पीछे लाइन लगा रखी थी और किसी ने मुझसे ये कहा तक नहीं कि भाई साहब जरा सा किनारे हो जाइए, ना कोई मेरे बगल से मुझे थोड़ा सा धक्का दे करके या मुझसे बच करके ही किसी ने निकलने की कोशिश की, वो सब के सब लाइन लगा करके खड़े हो गए। ये दृश्य मेरे लिए अद्भुत था। मैं सच पूछे तो इस दृश्य को देखने के बाद रोमांचित सा हो गया। मैं क्या कि कितने मैनर्स यहाँ के लोगों में हैं कि आपको जरा भी वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, फिर चाहे वो कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, और उनके चेहरे पर नाराजगी भी नहीं होती। मतलब आभार जताने का तरीका तो यहाँ के लोगों में मित्रों गजब का है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हम लोग कार से जा रहे थे, यहाँ कार बहुत तेज चलती, बहुत स्पीड से चलती है क्योंकि यहाँ के रोड इस तरह के हैं। तो उस समय हम लोगों की कार लगभग 125 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से थी, 125 किलोमीटर। तो इतने में लेन में हम लोग चल रहे थे, 3 लेन थी तो हम लोग एक लेन में बीच के लेन में चल रहे थे। तो दाहिने तरफ की जो तीसरी लेन थी उसमें से एक कार हम लोगों के आगे बढ़ते बढ़ते, हम लोगों के पैरेलल चलते चलते थोड़ी सी आगे बढ़ी और इसके बाद उस हम लोगों के लेन पर उसने आने की कोशिश की, लेकिन वो सही तरीके से नहीं आई और इसके बाद फिर से अपनी लेन में चली गई। तो जैसे ही वो कार हम लोगों के बीच वाले लेन में आने जैसी लगी, वैसे ही बट नेचुरल है कि जो चलाने वाले थे उन्होंने एकदम से ब्रेक लगाने की कोशिश की, तो जो कार में बैठे हुए थे उनको थोड़ा सा झटका भी लगा और उसको भी लगा कि शायद जो दूसरा व्यक्ति थे जो कार चला रहे थे कि उसने कुछ गड़बड़ की है, तो उन्होंने अपने कार को फिर से अपनी लेन में ले गए। अब बट नेचुरल था कि कार चलाने वाले की बहुत बड़ी गलती थी वो, क्योंकि ऐसे में कुछ भी हादसा हो सकता था। लेकिन अब देखिए कि होता क्या है, वो कार चलाने वाला चाहता तो हमारे पीछे पीछे आराम से चलता रहता, लेकिन उसने अपनी गाड़ी स्पीड से बढ़ाई और हम लोगों की गाड़ी के बगल में, कार के बगल में वो आया और आने के बाद उसने ग्लास से अपना हाथ निकालकर हाथ हिलाया और इसके बाद जो जिसके जिनकी कार में हम बैठे थे उन्होंने भी अपना हाथ हिलाया और वो फिर आगे वो अपने चलते बने और हम लोग अपना चलने लगे। तो मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ, तो इन्होंने बताया कि इसका मतलब ये है, हाथ अगर वो निकाल करके कह रहा है तो वो माफी मांग रहा है कि मुझसे गलती हुई है, इसके लिए मुझे आप माफ कर दें। और मैंने भी हाथ हिला करके कह दिया कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो मित्रों ये अब आप खुद सोच करके देखिए कि उससे उनसे गलती हो गई थी और बड़े आराम से वो आंख बचाकर जा सकते थे कि इसको क्या लेना है क्या देना है, लेकिन नहीं, चूंकि उनको लगा कि उन्होंने गलती की है तो ऐसा नहीं कि इसको यूं ही इग्नोर कर दें। उन्होंने गाड़ी अपनी तेजी के साथ आगे बढ़ाई, इसके बाद हाथ निकाला, ग्लास खोला। जनरली यहाँ के जब कार चलती हैं तो ग्लास खुले नहीं रहते, ग्लास बंद रखे जाते हैं, क्योंकि जब कार चलती है, जब जितनी की तेजी से कार चलेगी उतनी तेजी से हवा कार के अंदर आती है जिससे कार का बैलेंस बिगड़ता है, तो लोग अपने ग्लासेस बंद रखते हैं कार के, और एसी गाड़ियों में चलता रहता है तो हवा की बाहर की जरूरत भी नहीं होती। उन्होंने अपना ग्लास खोला होगा, इसके बाद हाथ निकाल करके हाथ हिलाया और इसके बाद आगे बढ़े। तो मैं समझता हूं मित्रों ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये 3-4 मैनर्स मुझे बहुत अद्भुत लगे, तो मैंने महसूस किया कि ये बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मित्रों ये बातें मैं आपके साथ कहानी किस्से सुनाने के लिए शेयर नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस रूप में शेयर कर रहा हूं कि आप इन कहानी किस्सों को अपने जीवन में शामिल करें। कहानी किस्से नहीं कहना चाहिए, इन सच्ची घटनाओं को, कहां जो कहानी किस्सों की तरह प्यारी घटनाएं मालूम पड़ती हैं, क्योंकि हमारे यहां शायद हम लोग ऐसा नहीं करते, अपने जीवन में शामिल करें और अपने व्यवहार में लाएं। ये मैं आप लोगों से मित्रों उम्मीद करता हूं। तो फ्रेंड्स ये था मेरे आज के इस ऑडियो गाइडेंस का फर्स्ट इस पार्ट, और अब मैं आता हूं इसके सेकेंड पार्ट पर, और वो है फ्रेंड्स AIR न्यूज के बारे में। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने AIR न्यूज सुना ही होगा। मित्रों आपने देखा होगा कि मैं बीच बीच में इस बात की आप लोगों को याद दिला देता हूं कि आप लोगों ने जरूर AIR न्यूज सुना होगा। एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि आप कभी भी इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि यदि आप AIR न्यूज नहीं सुनेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मेरा ऑडियो गाइडेंस सुन रहे हैं। आफ्टर ऑल मैं इस अपने ऑडियो गाइडेंस में AIR न्यूज की ही बातें करता हूं, तो जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो मैं अपने AIR अपने ऑडियो गाइडेंस में AIR की बता ही देता हूं, तो आपको AIR न्यूज सुनने की जरूरत नहीं है। मित्रों, इस बात को बहुत अच्छी तरह से आप गांठ बांध लीजिए कि मेरा ये जो ऑडियो गाइडेंस है ये कैपेसिटी बिल्डिंग का गाइडेंस है, कि आपके अंदर कैसे वो क्षमता पैदा हो सके कि जो AIR न्यूज आप सुन रहे हैं उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जो आप अखबार पढ़ रहे हैं अखबारों में कौन से न्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन से लेख इंपॉर्टेंट है, कौन से एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, साथ ही आप ये जान सकें कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आप फिर आगे उन चीजों का चयन कर सकें। तो इसे आप इस रूप में मत लीजिए कि मैं कोई क्लास के तहत आपको ये चीजें इस रूप में बता रहा हूं कि आप इनको सुन लें और आपके सिविल सर्विस की तैयारी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए जो व्यापकता चाहिए, जो गहराई चाहिए, वह बिना कैपेसिटी बिल्डिंग के किसी क्लास की पढ़ाई से, किताब की पढ़ाई से नहीं आ सकती। किताब, क्लास, ऑडियो, ये सब केवल आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी को बना नहीं सकते, कैपेसिटी की बिल्डिंग कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकते कि आप सीधे सीधे मुझे सुने और परीक्षा में जाकर के बैठें और आपका काम चल जाए। इसलिए इससे पहले कि आप मेरे इस ऑडियो गाइडेंस को सुने, बहुत जरूरी है कि आप न्यूज को सुने। जब तक आप न्यूज नहीं सुनेंगे, इस ऑडियो गाइडेंस का पूरी तरह से फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर, और कल के AIR न्यूज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि के आदान प्रदान के संबंध में जो समझौता हुआ है। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बहुत पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि हमारे पार्लियामेंट ने, दोनों सदनों ने 7 मई को इससे संबंधित विधेयक पारित किया था, और वो इस मामले में बड़ा अद्भुत विधेयक था कि उसे सर्वसम्मति से सबने पारित किया था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब आप देखिए कि ये एक घटना हो गई, भारत और बांग्लादेश के बीच अभी जो समझौते हुए वो एक घटना हुई, और हमारे प्राइम मिनिस्टर 2 दिन की बांग्लादेश की यात्रा पर गए। देखिए, जब कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि वह देश उस देश को बहुत अधिक अहमियत दे रहा है। आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हमारे प्रधानमंत्री किस तरह से पड़ोस के जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं उनको कितनी जबरदस्त अहमियत दे रहे हैं। तो मित्रों, जहां तक बांग्लादेश का संबंध है, तो अब इस बांग्लादेश वाली खबर को आप एक अवसर के रूप में लेंगे, इस अवसर के रूप में कि अब आपको इस टॉपिक पर अपनी पकड़ बना लेनी चाहिए। देखिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि अपनी पकड़ बना लेनी चाहिए, चलिए हम इसी पर थोड़ी से विस्तार से बातें करते हैं। आपको, लोगों को मैं लगातार याद दिलाता रहता हूं, और अभी फिर से याद दिलाना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि जो आपके अनसॉल्व्ड पेपर होते हैं वो आपके सबसे बड़े और सबसे अच्छे और सबसे सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। आपको कभी भी अनसॉल्व्ड पेपर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और ये अनसॉल्व्ड पेपर आपके टेबल पर ही होने चाहिए, बीच बीच में आप उन्हें देखते रहिए। तो जब आप 2013 के अनसॉल्व्ड पेपर मेंस के देखेंगे तो आप पाएंगे कि मेंस में इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट ज्यादातर क्वेश्चंस भारत के पड़ोसी देशों के संबंध में ही पूछे गए हैं, जो कि एक तरह से सार्क संगठन के देश आप कह सकते हैं। और आपको मालूम है कि जैसे ही हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सभी सार्क देशों के प्रमुखों को बुलाया, और लगातार वो इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अब हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर आ गए हैं, नॉट ओनली लुक ईस्ट पॉलिसी बट एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में बांग्लादेश हमारे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सार्क देशों में शामिल है, साथ ही लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आता है, और तीसरा, प्रधानमंत्री अभी यात्रा पर गए हैं, और चौथा, बहुत बड़ा उससे संबंधित विधेयक हमारे संसद ने पारित किया है, और वह भी सर्वसम्मति से पारित किया है। और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि इससे संबंधित समझौता 1974 में हो चुका था, 1974 में यह समझौता हो चुका था, लेकिन उसको पार्लियामेंट से पारित कराया जाना था, जो अभी पारित हुआ है। और इससे भी बड़ी बात, आप कहेंगे कि सर तो लगातार बड़ी से बड़ी बात बताते चले जा रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसी के तहत बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। यानी कि बांग्लादेश के बनने में भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। यदि अब आप अपने सिनॉप्सिस पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आजादी के बाद का भारत आपको पढ़ना है, इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आजादी के बाद के भारत में आप 1971 के भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। वो एक बहुत भारत के हमारे पूरे इतिहास का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो एक साथ आपका एक इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी हो रही है और दूसरी हिस्ट्री की, आजादी के बाद भारत की भी तैयारी हो रही है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ अगर भारत के संबंध बढ़ते हैं तो हम उसकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, खासकर तब जबकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो। मित्र, 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उस समय जो मुजीबुर रहमान थे, बट नेचुरल है कि वो भारत के बहुत ही पक्षधर थे, लेकिन उनके बाद से बांग्लादेश में लगातार सत्ता बदलती रही। मूल रूप से बांग्लादेश में दो लोगों की सत्ता रही है, एक शेख हसीना जो अभी वहां की प्राइम मिनिस्टर हैं और दूसरी हैं खालिदा जिया। ये दो अलग अलग पार्टियों की हैं और कभी शेख हसीना सत्ता में होती हैं तो कभी खालिदा जिया सत्ता में होती हैं। इसमें आपको केवल ध्यान ये रखना है कि जो शेख हसीना है वो भारत की पक्षधर है और जो खालिदा जिया हैं वो भारत की बजाय चीन और पाकिस्तान की पक्षधर अधिक हैं, राइट। तो अभी चूंकि शेख हसीना सत्ता में है, इसीलिए भारत के लिए यह बहुत बहुत अच्छा मौका है कि इस समय का इस्तेमाल करके वो खासकर बांग्लादेश में जो चीन और पाकिस्तान अपनी घुसपैठ करने की कोशिश कर रही, घुसपैठ क्या मतलब, आप ये कह लीजिए कि पकड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं, अपने पक्ष में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समय में भारत के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि वह पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को बहुत अच्छा करे। तो यह भी एक कारण है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान और चीन उधर एक धुरी बनाते चले आ रहे हैं। मित्रों, अभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो आप उनकी बातों पर कुछ गौर कीजिए जो न्यूज में आई है। पहली बात तो यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो मेरी यात्रा है और ये जो जितने समझौते हो रहे हैं वो वस्तुतः दोनों देशों के दिल और दिमाग को जोड़ने वाले हैं। ये कोई उस तरह के संबंध, विदेशी संबंध नहीं है, विदेशी नीति से किए गए संबंध नहीं है, ये बेसिकली भाईचारे के संबंध है। उसी को कहा है उन्होंने दिल और दिमाग को जोड़ने वाला संबंध। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जब भारत अपने विकास के बारे में सोचता है तो बांग्लादेश के विकास के बारे में भी सोचता है। एक बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात इस मायने में कि एक जो ट्रेडिशनल जो तरीका होता है संबंधों का, उस ट्रेडिशनल तरीके से हट करके हम एक बहुत ही नजदीकी, जैसे कि कोई एक नाता सा हो, एक उस लेवल पर जाकर के बांग्लादेश के बारे में हम सोच रहे हैं। फिर आपने यह भी देखा कि उन्होंने यह भी कहा कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और भारत, चार देशों के उन्होंने नाम लिए। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि मतलब भारत तो है ही और बांग्लादेश है, बांग्लादेश में हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे थे, और भूटान और नेपाल, ये चारों जो देश हैं वो बहुत महत्व मायने रखते हैं इस पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए, और ये छोटे छोटे देशों का ग्रुप है। तो निश्चित रूप से भारत के लिए ऐसी स्थिति में फिर से बांग्लादेश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मित्रों, आप जब थोड़ा सा आजादी के बाद के भारत के तहत बांग्लादेश के निर्माण के बारे में जान लेंगे, मैंने अभी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताई है, आप इसको जान लेंगे, तो अब आप देखें कि इस समझौते के कंटेंट क्या हैं। इस समझौते के बहुत थोड़े से कंटेंट हैं। देखिए, सिविल सर्विस में सीधे सीधे कंटेंट तो पूछे नहीं जाते कि क्या समझौता हुआ, उसके क्या क्या वो पॉइंट्स थे, वो उसके प्रभाव पर पूछेंगे, समालोचनात्मक परीक्षण करने के लिए कहेंगे, उस देश के उस क्षेत्र के शक्ति संतुलन में इसके योगदान की बात करेंगे, इस तरीके से करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर मैं कंटेंट पर आऊं तो केवल दो तीन छोटे छोटे कंटेंट हैं, लेकिन वो आपको मालूम होने चाहिए। पहला तो यह है कि इस समझौते के तहत भारत अपने 111 गांव बांग्लादेश को देगा, बदले में बांग्लादेश 57 गांव भारत को देगा। डजंट मैटर, भारत बांग्लादेश को लगभग 17,000 एकड़ जमीन देगा, बदले में भारत को बांग्लादेश 7100 एकड़ जमीन देगा, मतलब काफी कम जमीन मिलेगी। मतलब 40% जितना हम दे रहे हैं उसका लगभग हमको केवल 40% मिल रहा है। अगर हम देखें तो गांव भी वही हालत हो रहे हैं कि हम उनको 111 गांव दे रहे हैं, हमको बदले में 57 गांव मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो आपको लगेगा जैसे कि भारत एक तरह से लूजर है, लेकिन इससे जो फायदे होंगे, दूरगामी जो परिणाम होंगे, वो बहुत बड़े होंगे। पहला तो यह है कि 45,000 लोग जो भटक रहे हैं कि वो बांग्लादेश के नागरिक हैं या भारत के नागरिक हैं, वो इस्टैब्लिश हो जाएंगे और उनकी नागरिकता पक्की हो जाएगी। मित्र, दूसरी बात जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है कि जहां लोग जमीन के लिए लड़ाई झगड़े करते हैं, वहां ये दो देश जमीन एक दूसरे को दे करके मित्रता स्थापित कर रहे हैं। तो एक नया प्रतिमान एक प्रकार से विदेश नीति के मामले में हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा है। आप देख रहे हैं कि चीन के साथ जो हमारा विवाद है वो केवल जमीन को लेकर के है, सीमा को लेकर के है। तो इन सारी स्थितियों को देखकर भारत और बांग्लादेश का जो अभी जो समझौते हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा हुई है, ये सिविल सर्विस के पॉइंट से मुझे बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है। मित्रों, मैं दावा तो नहीं करता कि प्रश्न आएगा ही, कौन दावा कर सकता है, करना भी पूरी तरह से गलत होगा, लेकिन हम एक संभावना लेकर चलते हैं और उन संभावनाओं के आधार पर हम अपनी तैयारी करते हैं। तो मित्रों, ये एक, चूंकि मैं कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे किसी बिंदु को पकड़ करके हमें अपनी तैयारी को दिशा देनी चाहिए, उसको किस गहराई तक ले जाना चाहिए, ये सारे के सारे इंडिकेशंस सच पूछे तो हमें न्यूज़ में और न्यूज़पेपर्स के जरिए बड़ी आसानी से मिलते हैं, बशर्ते कि वो दृष्टि हमारे अंदर पैदा हो जाए। और इस ऑडियो गाइडेंस का एक उद्देश्य यही है, सच पूछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि वो आपके अंदर वो अंतर्दृष्टि पैदा कर सके। मित्रों, जो दूसरी थोड़ी जो छोटी छोटी खबरें हैं उनके बारे में मैं थोड़ी सी और आपसे चर्चा कर दूं। एक खबर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ये लगी, कौशल विकास के मामले को लेकर खबर थी। हालांकि जो स्किल डेवलपमेंट की जो योजना भारत शुरू करने जा रही है और इसके लिए अलग से मंत्रालय बना दिया गया है, मित्रों अगर आप विदेश में जाएंगे तो सच में इसका महत्व आपको पता लगेगा। आपने देखा है कि पंजाब के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है और छोटी सी चीज को हमें ध्यान में रख भी लेना चाहिए कि स्टूडेंट को, खासकर सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को, कि उन्होंने कहा कि ये जो कौशल विकास है, जो स्किल डेवलपमेंट है, इसको कृषि के क्षेत्र से भी जोड़ा जाना चाहिए। देखिए, जब हम कौशल विकास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आते हैं कि लोगों को कैसे लोहार का काम अच्छे से कर सकें, कारपेंटर का काम अच्छे से कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी का काम अच्छे से कर सकें, इनके बारे में उनको बताया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि कृषि विकास के कृषि कार्यों को भी कौशल विकास से जोड़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। हालांकि अब आप इस न्यूज को सुनेंगे और सुनकर के बड़े आराम से इस तथ्य की उपेक्षा कर सकते हैं कि ठीक है, एक बात है, कह दी गई है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मित्र, जो उन्होंने बात कही है उसके पीछे जो थॉट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के लिए कृषि बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपको आंकड़े मालूम है, मैं आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहूंगा। तो ऐसी स्थिति में अगर गांव के युवाओं को, या जो युवा से अधिक जो अधेड़ अवस्था में भी आ गए हैं, कौशल विकास के माध्यम से कृषि से जोड़ दिया गया, तो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी काफी बढ़ जाएगी। रोज 2,500 किसान खेती छोड़ रहे हैं, वो उससे जुड़ने लगेंगे, क्योंकि खेती के काम में उनको प्रॉफिटेबिलिटी मिलने लगेगी और बट नेचुरल है कि उनकी इनकम बढ़ेगी, तो फिर पूरे के पूरे GDP में हमारे कृषि का योगदान बढ़ जाएगा। तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, न केवल कृषि किसानों के लिए ही, बल्कि हमारे पूरे के पूरे आर्थिक विकास की गति को भी इससे बहुत ज्यादा सहारा मिलेगा। तो मित्रों, ये मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी। न्यूज में एक ये भी बात कही गई थी दोस्तों कि जो पब्लिक स्पीक का जो विषय है, देखिए कि पब्लिक बहुत अच्छा विषय रखा गया है, सुरक्षित खाद्य पदार्थ और उपभोक्ता हित। आपको ध्यान होगा कि जैसे ही मैगी नूडल्स की बात आई थी, मैंने इसी टॉपिक को आपसे मैं बार बार चर्चा करता रहा हूं कि सीधे सीधे मैगी नूडल्स पे क्वेश्चन नहीं आएगा, खाद्य पदार्थों में मिलावट और फिर खाद्य पदार्थों में मिलावट का ही संबंध देखिए इसी से है, सुरक्षित खाद्य पदार्थ और उपभोक्ता हित। मैं बार बार इसको दोहराता रहता हूं रहा हूं, तो आपको चाहिए कि आप इसे कोशिश करके सुने कि देखिए कि उसमें क्या क्या अप्रोच है, किस किस पॉइंट को लेकर की बातें लोग कर रहे हैं। मित्रों एक और भी खबर मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, अब देखिए कि वो और आगे क्या रूप लेती है, कि 3000 ऐसे उद्योगों की पहचान की गई है जो जल प्रदूषण सबसे ज्यादा फैला रहे हैं, जो अपने यहां के निकले हुए पानी को, गंदे पानी को नदियों में डाल रहे हैं। 3000 उद्योगों की ऐसी पहचान की गई है और हमारे पर्यावरण मंत्री ने यह बात कही है कि एक विधेयक इसके बारे में बन करके तैयार है और पार्लियामेंट के कमिंग सेशन में वो विधेयक संसद में लाया भी जाएगा। तो एक छोटी छोटी खबरें थी दोस्तों, और बाकी तो सारी छोटी छोटी और खबरें हैं, ऐसी नहीं है जिनकी मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही अब मैं आप लोगों से इजाजत भी चाहूंगा, क्योंकि बहुत अधिक रात हो चुकी है जबकि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आपको मेरी आवाज में भी थोड़ी सी आज भी एक अलग तरीके की थकान और सुस्ती और वो सुनाई दे रही होगी, आप शायद महसूस कर रहे होंगे, लेकिन कोई इससे फर्क नहीं पड़ता मित्रों। जो आप लोगों का जो उत्साह है, जो प्रेम है, जो सम्मान है, जो उत्कंठा है, वो लगातार हम लोगों के अंदर ऊर्जा पैदा करता रहता है, और उसी ऊर्जा के दम पर किसी भी कीमत पर हम लोगों की कोशिश होती है कि ऑडियो गाइडेंस आप तक पहुंचता रहे। और मुझे इस बात का आज फिर से एक बार संतोष है कि मैं इस काम को पूरा कर पाया, क्योंकि समय और जो यहाँ के जो कार्यक्रम थे उन सब को देखते हुए मैं बहुत ही द्वंद्व में था कि हे ईश्वर यह काम किस तरीके से पूरा हो पाएगा, लेकिन चलिए उन्होंने प्रार्थना सुनी और अंततः यह ऑडियो गाइडेंस आप तक पहुँच रहा है। मित्रों अब इजाजत चाहूँगा, नमस्कार।